ओम शांति। बेहद के बाबा में, बेहद की बाप की सदैव महिमा की जाती। त्वमेव माता पिता बंधु सखा, हमारे सर्व रिश्ते एक ही बेहद बाप के साथ है। बाबा की मुरली पड़ रही थी तो बाबा ने कहा, बच्चे देहधारियों का स्नेह ये गिराने वाला स्नेह है और परमात्म स्नेह ये चढ़ाने वाला स्नेह, क्योंकि जब से हम ब्राह्मण आत्माओं ने बाप की गोद लिया, ईश्वर बाप का बन के ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं, ईश्वर बाप के प्यार के झूले में झूल रहे हैं, तब से लेके हम सब ये अनुभव करते हैं कि बाबा का हम बच्चों के साथ कितना प्यार है और उस प्यार के पीछे हम सब बच्चे दीवाने। इसका ही शास्त्रों में गायन गोप गोपिकाओं के रूप में किया जाता, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है तो उससे जो नेक्स्ट है, लोग श्री कृष्ण को भी नेक्स्ट टू गॉड कहते, उसकी जो पहली पहली रचना है शिव बाबा के चरित्र उस रचना के साथ लगा दिए, उसके प्यार के दीवाने। हम देखते हैं यहाँ सब कहाँ कहाँ से भाग करके आकर के इकट्ठे हुए हैं, चाहे मुंह को पट्टी बांध के बैठे हैं, परंतु आए हैं उसके पीछे दीवाने बन। भक्ति मार्ग में भगवान के सर्व संबंधों का गायन करते थे परंतु उसकी अनुभूति नहीं होती थी, परंतु इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा और जब बाप की हम बच्चों ने गोदी लिया तो हमें ये अनुभव हुआ कि कैसे हमारे सर्व संबंध एक ही बेहद बाबा के साथ है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सर्व संबंधों की रचनाएं लेना सिखाया, सर्व संबंध जोड़ने की कला बताई कि मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई। इस पाठ को ऐसा पक्का कराया, एक एक संबंध का हमें अनुभव कराया और सदैव हम बच्चों का रक्षक बन के हमारे साथ साथ चलता रहा। अगर कोई भूले चुके भी कोई बाप का हाथ छोड़ करके रास्ता भूल के गलियों में भटक जाते हैं तो भी बाबा उनको छोड़ता नहीं, उनके पीछे पीछे घूमता, क्योंकि बाबा कहता है कि तुम मेरे सिकीलदे बच्चे हैं, तुम मेरे लाडले बच्चे हैं, तुम 5000 बरस के बाद मिले हुए बच्चे हैं। आपने कल की मुरली भी सुनी होगी ना कि अगर तुम बीमार है तो भले सो जाओ, हमने कहा क्लास में ऐसा ही सोते हैं, अभी बाप ने बोला तो पक्का सो जाएगी फिर तो। परंतु बाबा का इतना प्यार है बच्चों के साथ, जो बाबा अपनी प्यार की गोदी में हम बच्चों को ऐसा पालता है, जिस पालना के कारण ये सारी दुनिया फीकी और असार लगती, ये सारा संसार असार है, इस संसार में कोई सार नहीं है, इसके अनुभव का आधार ही बाबा का प्यार। बाबा ने इतना अथाह प्यार हम बच्चों को दिया है जिसके कारण ये सारा संसार फीका लगता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी स्थिति अभी ऐसी होनी चाहिए जैसा कि ये दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। तो सचमुच यही अनुभव होता है कि ये पुरानी दुनिया अब गई की गई, और है तो भी थोड़ी बहुत वो हमारे लिए नहीं है, उसके लिए दूसरे बहुत बैठे हैं। हम तो इस दुनिया से बहुत परे चलेगा। बाबा हमेशा कहते कि बच्चे तुम्हें ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसा कि स्वर्ग हमारे सामने है, हमारा घर हमारे सामने है। तुम्हें स्वर्ग के महल दिखाई पड़े, तुम्हें वहां के पेड़ पौधे दिखाई पड़े, वहां की तुम्हें सुंदरता दिखाई पड़े, तो ये पुरानी दुनिया तुम्हें आपे ही भूल जाएगी। तो इस बात का सब बच्चे अच्छी तरह से अनुभव करते हैं कि कैसे ये पुरानी दुनिया बिगर मेहनत भूल जाती और सदैव बाबा याद रहता, जिसने हम बच्चों के ऊपर इतना उपकार किया, जिसने हम बच्चों के ऊपर इतना प्यार किया। अभी हम अगर इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि हम जो भी ब्राह्मण बने हैं, हम सभी के ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? वैसे तो कहने में आएगी आप निश्चय है, ज्ञान है, परंतु ज्ञान को देख के हम उसके ऊपर दीवाने नहीं हुए, उसके प्यार को देख के हम उसके ऊपर फिदा हो गए। त्याग का आधार ही प्यार, पुरानी दुनिया को छोड़ के आने का आधार ही ईश्वरीय प्यार है, जिस प्यार की अनुभूति ने देह और देह के संबंधियों को भुला दिया, सारी पुरानी दुनिया को भुला दिया और नष्ट मोहस्मृति लब्धा बना दिया। गीता का ज्ञान सुनाने का अर्थ ये है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, सर्व से बुद्धि का योग तोड़ के एक बाप से लगाओ, क्योंकि हम रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा रोज रोज हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराता है कि बच्चे निरंतर मेरे को याद करते रहो, और मेरे को याद करते हुए औरों को भी याद दिलाते रहो। बाबा का हम बच्चों के साथ कितना प्यार है, अगर उसको हम देखेंगे, उसका हम अनुभव करते हैं, तो उस प्यार का रिटर्न हम एक जन्म नहीं परंतु 84 जन्म में भी नहीं कर सकते। परंतु बाबा कहते कि बच्चे अगर तुम्हारा मेरे साथ प्यार है, तो प्यार की निशानी ये है कि बाबा को जिसके साथ प्यार है उसके साथ हमारा प्यार होना चाहिए। बाबा कहता मैं प्यार का सागर हूं, तो तुम मेरे बच्चे प्यार की गंगाएं हो, प्यार बरसाने वाले हो। बाबा के साथ हम सब बच्चों का इतना प्यार है, और बाबा का हमारे साथ इतना प्यार है जो रोज बाबा बैठ करके हम बच्चों को, हम उसकी सजनियां हैं, वो साजन है, और बाबा रोज हम बच्चों को 4 पेज का लव लेटर लिखता है। दुनिया में कोई ऐसा है जो रोज बैठ के लव लेटर लिखे अपनी सजनियों को? बाबा की मुरली क्या है, लव लेटर ही है। रोज हम बच्चों के ऊपर इतना प्यार बरसाता है, जो हम बच्चे उस प्यार के झूले में झूलते हैं और खुशी और मौज में रहते। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी स्थिति जो है वो सदैव लवलीन की स्थिति रहे। बाबा ने कहा कि बच्चे लव में लीन हो जाओ तो तुम्हें ये दुनिया दिखाई नहीं पड़ेगी, लव में लीन हो जाएगे तो तुम्हें परिस्थितियां नजर नहीं आएगी, लव में लीन हो जाएंगे तो कोई परीक्षाएं तुम्हारे को रोक नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा लव में लीन हो, और हम लोगों ने भक्ति मार्ग में परमात्मा में लीन होने की बात कर दी। तो बाबा के लव में लीन रहने के लिए हमें क्या करना है? जैसा हम देखते हैं कि मीरा जो थी भगतन थी भले, परंतु श्री कृष्ण के लव में लीन थी। उसको कृष्ण के बिगर कोई भी नहीं दिखाई पड़ता था। जहां देखती थी उसको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ता था। क्या हमें भी सब कुछ देखते हुए सब कुछ करते हुए बाबा दिखाई पड़ता है? बाबा नजर आता है या और भी कुछ नजर आता है? अगर सदैव हमको बाबा नजर आता है तो हमारी आंख कभी भी किसी में डूब नहीं सकती। बाबा का हमारे साथ प्यार है, बाबा ने प्रूफ कर दिया है। हमने भले भक्ति में उसकी कितनी भी गलानी किया, कितनी भी गालियां दिया, कितने भी अपकार किए, तो भी बाबा ने आकर के हमको पहले पहले अपने गले लगाया, हमारे ऊपर बड़े से बड़ा उपकार किया। और सिर्फ गले नहीं लगाया, परंतु गले की माला बना दी। तो बाबा का प्यार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। परंतु हमारा प्यार बाबा के साथ कितना है, इसको भी चेक करने की आवश्यकता है कि हमारा बाबा के साथ अगर प्यार है तो बाबा का जिन जिन बातों से प्यार है, हमारा भी उन बातों से प्यार होना चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं अगर तुम्हारा मुरली से प्यार है बाबा की, तो मुरलीधर से प्यार, क्योंकि बाबा को मुरली से अति प्यार है। वो मुरली बजाने के बगैर रह नहीं सकता है, और हम बच्चे भी उसकी मुरली सुनने के बगैर रह नहीं सकते। तो बाबा जितना लगन से रोज मुरली बजाता है, सुनाता है, उतना ही लगन से हम मुरली सुनते हैं। इतना प्यार हमारे को मुरली से है जो हम मुरली के बगैर जी नहीं सकते हैं। भक्ति मार्ग में बताते थे जो श्री कृष्ण था उसकी गोपिकाएं मुरली सुनने के लिए भाग भाग की आती थी, उनको सुधबुद्धि नहीं रहती थी। रात क्या है, दिन क्या है, एक पैर में चप्पल पहनी नहीं पहनी, एक आंख में काजल पहना नहीं पहना, ये भागे। तो हमें इतना मुरली के साथ प्यार है जो हमें बाबा और बाबा की मुरली दिखाई पड़ती है, जो मुरली हमारी जियदान, क्योंकि हम देखते हैं बाबा का मुरली के साथ इतना प्यार है और था। चाहे बाबा का रथ कभी नादुरुस्त भी होता था, बाबा अमृत वेले उठ करके बच्चों के लिए मुरली लिख के देते थे और मम्मा पढ़ के सुनाती। बच्चों की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मिस होने दो, पर मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। जब भी हम बाबा के पास पार्टी लेके आते थे साकार में, उस समय तो जमाना ही अलग था। अभी ये आपके पास कंप्यूटर आ गए, ये ईमेल आ गए, इतने साधन आ गए सारे, ये व्हाट्सएप आ गए। उस समय तो जो मुरली होती थी वो 15-15 दिन के बाद आके मिलती थी, पोस्ट का भी ठिकाना नहीं था। तो मुरली भी लिथो करते थे, पहले तो हाथ से लिखते थे, फिर लिथो करते थे, फिर धीरे धीरे प्रिंट होने लगी। अभी तो कहाँ की कहाँ जाके पहुंचे। तो हम जब ही ट्रेन में आते थे बाबा के पास, तो जरूर उस दिन की हमारी मुरली मिस हो जाती थी, क्योंकि जब भी हमारे को हाथ में मिले तभी हम पढ़े। हम तो ट्रेन में होते थे, पहले तो किसी को मुरली मिलती नहीं थी। अभी तो हम देखते इधर मुरली चलती, उधर सबके हाथ में मुरली होती। तो उस समय का जमाना और अभी के जमाने में तो रात दिन का फर्क। तो बाबा हमेशा पार्टियां आती थी, तो बाबा शाम को छोटे हॉल में बच्चों से मिलते थे, मेडिटेशन हॉल, हिस्ट्री हॉल, मेडिटेशन हॉल तो था नहीं। तो पहला प्रश्न बाबा ये पूछते थे, बच्चे आज की मुरली सुनी? अभी सुनी कहां से, हम आए देरी से। तो हम कहते थे नहीं बाबा, हम तो बहुत देरी से अभी शाम को आए, तैयार होके भाग के इधर आ गए। बाबा कहता था नहीं, पहले जाओ मुरली सुनो, कोई आप लोगों को मुरली सुनावे, पीछे बाबा आएगा फिर मिलेगा आप लोगों। तो इतना बाबा इम्पोर्टेंस बताता था हम लोगों को मुरली का, तो इतनी लगन हम अपने को देखे कि हमारी मुरली से इतनी लगन है, क्योंकि मुरली जो है उसमें खुदाई जादू है खुदा का। उस मुरली के जादू के आधार पर ही हमारा जीवन परिवर्तन होता है। तो बाबा जो इतना मुरली से प्यार करता है, तो हमारा मुरली से अगर प्यार होगा तो मुरलीधर से जरूर प्यार होगा। और बाबा जो इतना भोजन हमको देता है मुरली का, साथ में बाबा ये भी बता देते हैं कि बच्चे तुम जो रोज बाबा की मुरली सुनते हो या पढ़ते हो, उसके ऊपर तुम विचार सागर मंथन करो। ऐसा नहीं एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, आप उसको चबाओ। जैसा हम देखते हैं कि गायें बैठ करके एक घंटा घास खाएगी पर सारा दिन उनका मुंह हिलता रहता है, वैसा ये ज्ञान घास है। इसको जब हम बैठ करके श्रवण करते हैं, उसके बाद इसको चबाते हैं, क्योंकि कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। तो जितना जितना आप मुरली के बाबा के महावाक्यों का सिमरण करेंगे, उतना उतना आपको सुख की अनुभूति होगी, उतना उतना आपको आनंद की अनुभूति होगी। और जितना हम बाबा की मुरली का सिमरण करते हैं, उतने हमको ज्ञान रतन मिलते। ऐसा ही मुरली सुन लेंगे तो कुछ नहीं होगा, परंतु उसका सिमरण करने से हमारे पास वो माल आता जाता है और उसको जीवन में धारण करना बड़ा अच्छा होता है, सहज होता है। जैसा समुद्र के किनारे जाके खड़े रहेंगे तो ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं, परंतु अगर हमारे को मोती चाहिए तो उसके अंदर जाना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, तभी हमारे को मोती प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार बाबा की मुरली सुनने से हमारी आत्मा जो है वो तो एकदम ठंडी हो जाती है, परंतु अगर हमारे को बाबा से ज्ञान रत्नों को धारण करना है तो उसके लिए हमको गहराई में जाने की आवश्यकता है। तो जितना जितना हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, बाबा की मुरली की गहराई में जाते हैं, उतना उतना वो ज्ञान हमारी प्रॉपर्टी हो जाता है। उसको सहज रीति से हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। बाबा कहता है मेरे को रूप बसंत बच्चे अति प्रिय। तो जो रूप भी है आत्मिक रूप में स्थित होने वाले हैं, और बसंत अर्थात ज्ञान की वर्षा वर्षाने वाले हैं, ज्ञान की वर्षा भी वो बरसा सकते हैं जिनके पास ज्ञान का भंडारा भरपूर, और भरपूर तभी रह सकता है जब हम उसको अपनाते हैं। अगर सुन के छोड़ देते हैं तो हमारा भंडारा भरपूर नहीं होता है, भूल जाता है, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान शस्त्र भी। तो जिस समय माया का वार होता है उस समय वो शस्त्र हमको काम में आते हैं, परंतु आज देखो जो योद्धा है उसको यही याद नहीं होगा मेरे पास कौन सा शस्त्र है तो यूज कैसा करेंगे। तो उसी प्रकार अगर हमारे को इस ज्ञान को यूज करना है, माया के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो उसके लिए ये शस्त्र हमारे पास हमेशा रहने चाहिए। जो समय के ऊपर कोई भी बात होवे तो हम उसके ऊपर बाबा ने क्या बोला है उसकी स्मृति के द्वारा हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते। तो बाबा से प्यार माना ही बाबा की मुरली से प्यार, बाबा से प्यार माना बाबा की पढ़ाई से प्यार। जब तक बाबा की पढ़ाई से प्यार नहीं है, बाबा कहता है बच्चे निरंतर मेरे को याद करो। याद का आधार क्या है? प्यार। कैसा याद करो? दिल से याद करो, क्योंकि मैं दिलाराम, बाबा को हमेशा दिलाराम कहा जाता है, वो हमारा दिल लेने वाला है, हमको दिल देने वाला। तो जब हमारा वो दिलाराम है तो उसको दिल से स्नेह से याद करने की आवश्यकता है। स्नेह हमेशा स्नेह को पहुंचता है। कभी कभी कोई बच्चे बाबा से पूछते थे, बाबा हम आपको इतना याद करते, आप हमारे को याद करते हैं? बाबा कहता था, सिंधी में पहाका है, मिठड़ा घुर तो घुरई, मतलब तुम मेरे को याद करो तो मैं तुमको याद करूंगा, तुम मेरे को याद ही नहीं करेंगे मैं क्यों याद करूं। तो जितना जितना हमारा कनेक्शन बाबा से होता है तो हम भी बाबा को जरूर याद रहते हैं, इसीलिए तो हमें इतना प्यार करता है। तो हमारा दिल से बाबा का प्यार है, जैसा हम देखते हैं हमारी जानकी दादी को, और कुछ याद नहीं है, एक बात पक्की याद है, मैं कौन और मेरा कौन, बस उस मेरे को ही देखती रहेगी, वो ही मेरा। तो जब है ही वो मेरा और मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, उसने मुझे स्वीकार किया है और मैंने उसको स्वीकार किया है, जब हमारा संसार ही बाबा है तो बाबा के साथ हमारा दिल का प्यार होना चाहिए, मतलब का प्यार नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे मतलब का प्यार क्या होता है? जब समस्या आती है उस समय पर याद का चार्ट बढ़ जाता है। वास्तव में देखा जावे तो हमारे याद का अगर चार्ट बढ़ा हुआ है तो समस्या आएगी नहीं, परंतु अगर हमारा याद का चार्ट ठीक नहीं है तो समस्या आएगी। समस्या आएगी तो उस समय फिर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा याद करते, याद नहीं रहती है, समस्या ज्यादा याद रहती है उस समय, भले शिव बाबा करेंगे, बुद्धि लगती थोड़ी है। और ऐसे समय पर जब भी हम मतलब से उसको याद करते हैं उसका रिस्पांस भी हमको वैसा ही मिले। अगर हमारा बाबा के साथ दिल का प्यार है, सदैव हमको बाबा याद है, तो हमारे को बाबा मदद भी इतनी ही दिल से करता है। बाबा के साथ प्यार अर्थात बाबा के कर्तव्य के साथ प्यार। बाबा का क्या कर्तव्य? लौकिक में भी आप देखेंगे, कोई बच्चा है, बाप को बोलेगा मेरा आपके साथ बहुत प्यार है, पर बाप जो कहेगा उसकी आज्ञा पर नहीं चलेगा तो क्या प्यार हुआ? ये तो मतलब ही प्यार हुआ, प्रॉपर्टी लेने के लिए प्यार हुआ। परंतु प्यार का मतलब यही है कि बाप की जो आज्ञाएं हैं उनके ऊपर चलता रहे। तो बाबा की जो भी आज्ञाएं हैं उसको हम सिर माथे पर करके चलते हैं या नहीं चलते? आप अगर मम्मा बाबा को देखेंगे, जैसे मम्मा को कभी किसी ने पूछा, मम्मा देखो बाबा ने, कोई कोई ऐसा, कोई कोई होते हैं ऐसे बच्चे, बाबा ने कुछ बोला ना, कहे हमारे को ये नहीं समझ में आता बाबा ऐसा क्यों बोला, अरे बाबा वो ज्ञान का सागर है, बाबा वो हमारा बाप है, सब कुछ बोल सकता है, आप ऐसा क्यों बोलते, ये क्यों संकल्प आता है? तो किसी बच्चे ने मम्मा से पूछा, मम्मा बाबा ने ये फलानी बात बोली, आपका इसके ऊपर क्या विचार? मम्मा ने कहा, मेरा विचार? बाबा ने बोलने के बाद मेरा क्या विचार हो सकता? जो बाबा का विचार हो मेरा विचार, मेरा कोई विचार नहीं। तो ये जो बुद्धि का थोड़ा भी अहंकार होता है ना, तो इसमें समझते हैं हम ज्यादा होशियार हैं, तो इसीलिए बोलेंगे हमारा ये विचार है, हमारा ये विचार नहीं। बाबा तो बुद्धिवानों का बुद्धिमान, उसकी जो आज्ञा है उसका जो विचार है वो हमारा विचार है, बाबा का जो धंधा है वो हमारा धंधा है, बाबा के जो गुण है वो हमारे गुण है, बाबा का जो कर्तव्य वो हमारा कर्तव्य। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि बाबा ने जो कहा वो मुझे उसी समय करना है। जैसा हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, टाइम लगाया गया, पहला नंबर क्यों आया उसको, क्योंकि जो बाबा ने ऑर्डर किया उसी समय उसने करके बताया, बाबा के लव में लीन रहा, सदैव लव में लीन रहा अर्थात उसकी आज्ञाओं पर चलता रहा। हमारा आपके साथ बहुत प्यार है परंतु आपकी आज्ञा नहीं माननी है तो ये कोई प्यार हुआ? आप जो बोलते हो वो मुझे नहीं करना है, मुझे अपनी मर्जी से ही करना है, ये प्यार हुआ, ये रिस्पेक्ट हुआ? परंतु नहीं, जो बाबा बोले वो मुझे करना ही है, साकार बाबा का निराकार से कितना प्यार था हम प्रैक्टिकल में देखते थे। बाबा कभी भी कोई भी सीजन का नया फल निकलता था बाबा मुंह में नहीं डालते, बाबा के आगे लेके आएंगे ना बाबा कभी भी नहीं चखेगा उसको। बाबा बाबा देखो ना अभी थोड़ा भोग का समय नहीं है, तो दूसरे समय बोलेगे बाबा टेस्ट तो करके देखो। बाबा बोलता था नहीं, पहले बाबा को भोग लगाओ पीछे बाबा खाएगा। इतना बाबा का रिस्पेक्ट और इतना प्यार, नहीं तो बाबा तो हम तो मस्ती कर रहे, हम कह रहे बाबा बाबा तो आपके तन में बैठा है ना, ऐसा भोग लगाने की क्या बात। बाबा बोलता था नहीं, मर्यादा क्या कहती है, खिलाने वाले को जब तक नहीं खिलाया तब तक खा नहीं सकते। आप देखेंगे ना उस गीता में भी है कि अगर आप जो खिलाता है जो देता है उसको नहीं खिलाते हैं और आप खाते हैं तो आप चोर हैं, क्योंकि उसकी उसकी चीज है ना, उसका भंडार है। तो बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिकल में बताता था कि प्यार कहा किसको जाता है। प्यार उसको कहा जाता है जो कदम कदम पर उसकी श्रीमत पर चले, जो सदैव मर्यादाओं पर चले। बाबा का मर्यादा से प्यार था तो हमारा भी ईश्वरीय मर्यादाओं से प्यार होना चाहिए। बाबा ने जो कहा उसके साथ हमारा प्यार होना चाहिए, हमारा पढ़ाई से सदैव प्यार रहे, सदैव बाबा याद रहे। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों के द्वारा, उस दिन आपने संडे की मुरली सुनी होगी, बाबा ने कहा तुम्हारे द्वारा बाप दिखाई देना चाहिए। अगर बाप नहीं दिखाई देता है तो ये भी पाप है। देखो कितना सूक्ष्म बाबा हम बच्चों को समझाता है, छोटी छोटी बात क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। जब बाप तुम्हें याद है और तुम बाप की आज्ञाओं पर चल रहे हो, तुम बाप के समान बन रहे हो, तो तुम्हारे द्वारा बाप दिखाई देना चाहिए। जैसा नहीं मीरा को देखते तो श्री कृष्ण याद आता है ना, तो तुमको देख के बाप क्यों नहीं याद आता। इसका मतलब याद का चार्ट कम है इसलिए बाप याद नहीं आता, बाबा के लव में कम लीन है इसलिए याद नहीं आता। अगर बाबा के लव में लीन है तो बाबा जरूर याद आएगा। और जिनको जो आत्माएं बाबा के लव में लीन रहती है उसको कभी भी कोई कठिनाई आएगी तो कठिनाई नहीं भासती। उसका हरेक परीक्षाएं जो है, जो भी समस्याएं हैं, वो सूर्य से कांटा हो जाए, वो पहाड़ से राई नहीं परंतु रुई हो जाएगी, क्योंकि उसको सदैव बाबा याद। तो बाबा के आगे एक हमारा गीत भी है ना, कह दो तुम खुदा से ये समस्या इससे क्या क्या है, मुसीबतों से क्या, मुसीबतों से है क्या है कुछ ऐसा, हाँ क्या है, मतलब हमारा खुदा बड़ा है तुम बड़े नहीं है, नहीं तो हाय हाय करते रहते थे। देखो जब भी खुदा बड़ा नहीं मालूम था तो सारा समय जो भी मुसीबतें आती थी तो हाय हाय करते थे, हाय ये मुसीबत आ गई, हाय ये हो गया, हाय मेरा नसीब खराब है। अभी हाय हाय बोलते हो, वाह वाह बोलते हो, अभी तो सब वाह वाह बोलते हैं ना। जो अभी तक हाय बोलते हैं वो हाथ ऊपर करो, हाय ये क्या हो गया। आजकल तो दुनिया में फैशन एक दो को मिलेगे तो हाय, अरे हाय क्या, हाय क्यों करते हो। पता नहीं ये कौन सा इन्होंने निकाला है, बाहर से कोई ना कोई बीमारी, अभी बीमारी भी बाहर से आई है ये इतनी बड़ी, क्योंकि भारत वालों को आदत है ना औरों को कॉपी करने की, तो बीमारी भी उधर से पार्सल होके आई है। तो बाबा कहता है कि बच्चे सदैव जैसा बाबा के ऊपर कितने बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, परंतु बाबा को परीक्षा परीक्षा नहीं लगी, बाबा को परीक्षा मनोरंजन लगा, साकार को ऐसा लगा, क्योंकि निराकार सदैव उसके साथ था, सर्वशक्तिवान मेरे साथ। आप ऐसा नहीं समझो कि शिव बाबा ने उसके तन का आधार लिया इसीलिए उसको इतनी बड़ी प्राप्ति हुई, नहीं, उसने खुद के लिए मेहनत किया, बाबा ने अपनी स्थिति बनाने के लिए मेहनत किया, कल परसों भी बोल रहा था ना, तुमको तो बच्चे कुछ नहीं, तुम तो बहुत सहज रीति से चल सकते हो, बाबा को तो देखो कितनी फिकर होती है, तुम तो फिकर से फारग हो। बाबा को, बाबा बच्चों को बहलाने के लिए बोलता है, बाकी बाबा को क्या फिकर था, बाबा को कोई फिकर नहीं, वो तो सदैव आप देखेंगे तो एकदम बेफिकिर बादशाह था, कोई फिकर नहीं। उसने कभी मेरा समझा ही नहीं जो उसको फिकर होवे, फिकर उसको होती है जो मेरा समझता। उसने हमेशा यही समझा, ये यज्ञ शिव बाबा का है, ये बच्चे बाबा के हैं, ये कार्य बाबा का है, मेरा तो कुछ भी नहीं। अरे ये तन भी मेरा नहीं, जब तन ही मेरा नहीं तो क्या मेरा है? ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास तन है, ना मेरे पास मन है, सब कुछ उसका है। शिव बाबा की प्रवेशता होने के बाद बाबा ने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं है। कोई आके देता भी था ना, बाबा बोलता था जाओ बच्चे सेवा में लगाओ, जाकर जाके सेंटर खोलो, जाके आत्माओं को संदेश दो। बाबा ने कभी भी लिया नहीं, दाता का रथ था, देने वाला था, लेने वाला थोड़ी। और सदैव कोई भी बात, इतनी बड़ी समस्या आई, भेगरी पार चला तो भी बाबा निश्चिंत क्यों रहा? क्योंकि बाबा के बच्चे है, बाबा को फिकर है। अगर मेरा समझता था तो चिंता होती थी, तो वैसा ही जब हम मेरा समझते हैं तो चिंता होती है, परंतु जब तेरा समझ लिया, तेरा कर दिया, फिर चिंता की क्या बात, फिर तो प्रभु चिंतन की बात हो गई ना। तो जिसको सदैव बाबा याद है, जिसका बाबा के साथ गहरा संबंध है, जिसने दिल बाबा को दे दिया है, हम बाबा के दिल में है, बाबा हमारे दिल में। हनुमान का मिसाल क्या, बाबा कहते हैं तुम ही तो महावीर हो, हनुमान की छाती में किसको बताते हैं, महावीर को बताते। वो तो स्थूल में ही बताएंगे ना, छाती में थोड़ा ही होता है, स्मृति की बात है। स्मृति में सदैव एक ही राम रहा, तो निराकार राम हमारी स्मृति में है, सदैव उसकी याद है। उसकी याद अगर मुझे है तो हम वो याद दूसरों को दिला सकते। अगर उसकी याद सदैव हमारे को है तो हम सदैव खुशी में नाच सकते हैं, क्योंकि संगम युग जो है वो चढ़ती कला का युग है, संगम युग जो है वो मौजों का युग है। बाबा ने उस दिन कहा ना, ये मौजों का युग है, खुशियों का युग है। तो जब ये समय पीरियड ही खुशियों का चल रहा है तो हमें गमी किस बात की है, चिंता किस बात। तो एक तो बाबा का मुरली के साथ प्यार था, तो हमारा भी अगर हमारा उसके साथ सच्चा प्यार है तो मुरली के साथ प्यार होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं बाबा का मुरली के साथ प्यार था, इसीलिए तो रोज परम धाम से आके हमको मुरली पढ़ा। बाबा अव्यक्त हुआ तो भी आकर के बाप दादा हम बच्चों को कितनी हमारी सेवा किया, आज भी बाबा हम बच्चों की कितनी परवरिश कर रहा है, सेवा कर रहा है। प्यार के बिगर होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बाबा का परिवार के साथ कितना प्यार, ब्राह्मण परिवार का। तो हमारा इतना ब्राह्मण परिवार का आपस में प्यार है, अगर हमारा बाबा के साथ प्यार है और ब्राह्मण परिवार के साथ प्यार नहीं है तो भी हम बाबा के लव में लीन नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम नई दुनिया में जा रहे हो, तुम ऐसी दुनिया स्थापन कर रहे हो जहां शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। तो जब शेर और बकरी हिंसक पशु जो है उनका आपस में इतना प्यार, वहां तो हिंसा नहीं करते, इतना प्यार है, तो तुम्हारा आपस में जो 5000 बरस के बाद मिले हो तो तुम्हारा आपस में कितना प्यार होना चाहिए, कितना स्नेह होना चाहिए। तो एक दो के साथ स्नेह बढ़ाने के लिए, चाहे ज्ञानी होवे चाहे अज्ञानी होवे, कोई भी होवे, सब कौन है, बाबा के बच्चे। बाबा का सबके साथ प्यार है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, सबके साथ प्यार है। तो हमारा भी सबके साथ प्यार रहे, क्योंकि हम सर्व के पूर्वज हैं। हमारा सभी का स्थान कहाँ है, इसमें कल्प वृक्ष में हम मूल में बैठे। तो जब हम मूल में बैठे हुए हैं, सारे वृक्ष को जल कहाँ से मिलता है, खाद कहाँ से मिलती है, मूल से मिलती है ना। तो ये सारे कल्प वृक्ष को स्नेह शक्तियां जो भी ईश्वरीय प्राप्तियां हैं वो किसके द्वारा मिलेगी, हमारे द्वारा ही मिलेगी। ऐसा थोड़े एक पत्ते को मिलेगी दूसरे को नहीं मिलेगी, सर्व को मिलेगी। तो इसीलिए हमारा सबके साथ गहरा कनेक्शन। और हमेशा देखो पूर्वज जो होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारी जो बिरादरी है वो सदैव सुखी रहे, वो सदैव फले फूले। तो इसीलिए हम सदैव सब सुखी रहे क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं, सदैव सुखी रहे सब। उसके लिए बाबा कहते बच्चे सुख देते रहो, शांति देते रहो, आनंद देते रहो, क्योंकि तुम दाता के बच्चे। तो जब दाता के बच्चे हो तो दाता का काम क्या है, देना। तो जितना जितना तुम देगे ईश्वरीय प्राप्तियां औरों को कराएंगे उतनी उतनी तुम्हारी प्राप्तियां बढ़ती जाएगी। दूसरी कोई भी चीज है देने से कम होती है, परंतु ये ईश्वरीय प्राप्तियां देने से बढ़ती है। आप ज्ञान भी दूसरों को देते हैं, आपकी खुशी बढ़ती जाती है, आपको आशीर्वाद मिलती जाती है, अनेकों की दुआएं मिलती है, जो दुआएं हमें निरोगी बनाती है, जो दुआएं हमारी आयु बड़ी करती है। तो कितना फायदा होता है इससे। परंतु ये हम कभी कर सकते हैं जब आत्मिक स्मृति में स्थित रहते हैं। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम समझते हैं कि ये सब हमारे हैं। बाबा को हमारे से इतना क्यों प्यार है, क्योंकि उसको मालूम है ये सब मेरे बच्चे। तो जैसा बाबा ये नहीं भूलता है कि ये मेरे बच्चे हैं, वैसा हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब हमारे ही भाई बहन हैं। चाहे कोई भटके हुए है, चाहे कोई उसके सन्मुख है, चाहे बेमुख। और विशेष तो बाबा हम बच्चों को ये बताता है कि जो प्यार करते हैं उनसे प्यार करना बड़ी बात नहीं है, परंतु जो अपकार करते हैं, जो मुख मोड़ते हैं, उनके साथ भी प्यार करना यही सच्चा प्यार। क्योंकि उन आत्माओं को रास्ता बताना किसका काम है, तुम्हारा ही काम है। तो इसीलिए हमें सदैव ही अपने को देखना है कि हमारा सबके साथ, परिवार के साथ प्यार है। ये हमारा ईश्वरीय परिवार है। कल था ना मुरली में, ले लो दुआएं माँ बाप की। कौन से माँ बाप की दुआएं लेगे, सिर्फ माँ बाप की दुआएं लेगे और भाई बहनों की क्या लेगे, बद्दुआ। उनकी भी तो दुआएं लेनी है ना, सबकी दुआएं लो। तो दुआएं लेना ये बहुत सबसे बड़ी प्राप्तियां दुआओं की है। और दुआएं तभी ले सकते हैं जब एक दो को सुख देते हैं, और सुख तभी दे सकते हैं जब ये स्मृति रहती है कि ये हमारे ही परिवार के हैं, हम एक ही बाबा के बच्चे हैं। आत्मिक स्मृति में रहने से एक दो के गुण दिखाई पड़ते। बाबा कहते हैं ना गुण ग्राही दृष्टि रखो, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही क्या है, सर्वगुण संपन्न बनना। तो जब हमारी गुण ग्राही दृष्टि होती है, आप देखो किसी का भी गुण देखेंगे तो उसके लिए आपको प्यार आएगा, और किसी का अगर अवगुण देखेंगे तो क्या होगा, नफरत आएगी। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया, एक दो के गुण देखो तो एक दो के लिए तुम्हें प्यार आएगा। और जब तुम्हारा ये पक्का हो जाएगा, देखो हमारा इतना बड़ा परिवार, ये ऐसा परिवार, बेहद का परिवार, संगम के बिगर कभी नहीं मिल सकता है। सतयुग में ऐसे हो गए कि हो गई नहीं, कहाँ मिलेगी। वहां तो तीन चार लोग हो गए एक एक घर में, और कितने हो गए। परंतु यहाँ देखो कितना बड़ा परिवार, खुशी होती है। भाग भाग के क्यों आते हैं, इसीलिए आते हैं हम। अपने बाबा से तो मिलते हैं, पर बाबा के परिवार से मिलते, अपने परिवार से मिलते हैं। तो ये जो अपनापन है ना, अपनापन हमारे को बहुत हिम्मत देता है, अपनापन हमारे को शक्ति देता है। आज दुनिया में लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं, जीव घात करते हैं, उसका कारण क्या है, अकेलापन। वो अपने को अकेला समझते हैं, अकेला समझने के कारण कोई भी प्रॉब्लम होगा तो घबरा जाते हैं। परंतु यहाँ हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम अकेले नहीं पर बहुत बड़े परिवार वाले। आप लोगों को सबको खुशी होती है ना बड़े परिवार की, जिसको खुशी होती है हाथ ऊपर करो, सबको होती है देखो खुशी। फिर खुशी होती है तो ताली तो बजाओ ना खुशी की। ऐसा बाबा देखो हम बच्चों को सदैव खुश रहना, बाबा ने बहुत बड़ी खुराक दे दिया है। तो इसीलिए सदैव ये याद रखो, बाबा के लव में लीन होने के लिए, बाबा का जिस मीठे परिवार के साथ प्यार है हमारा उसके साथ भी सदैव प्यार रहे, एक एक आत्मा के साथ प्यार रहे और सदैव हम दाता का पाठ बजाते रहे। कभी भी किसी से लेने की अपेक्षा नहीं रखो। अगर लेने की अपेक्षा होगी तो आप प्यार नहीं कर सकते, देने की अपेक्षा रखो। तो जब हम देंगे औरों को तो हमारे को खुशी होती है, जब औरों को देंगे तभी हमारे को शक्ति मिलती है, औरों को देंगे तो हमारे को दुआएं मिलती है। इसीलिए एक दो को सहयोग देते रहो, एक दो को आगे बढ़ाते रहो, और जितना औरों को आगे बढ़ाएंगे उतना आप भी आगे बढ़ते रहेंगे, और आगे बढ़ करके जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, हमारी नई दुनिया आ जाएगी। तो अभी हमें सदैव बाबा की याद में रहते हुए, बाबा के लव में लीन होते हुए, कोई भी वस्तु पदार्थ व्यक्ति हमको याद नहीं आए सिवाय एक बाबा के, अगर इस बात का हम ध्यान रखते हैं तो उससे क्या होते हैं, हमारा जीवन बाबामय हो जाता। भक्ति मार्ग में जो कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा बन जाती है, आत्मा सो परमात्मा नहीं बनती है, परंतु आत्मा बाप समान जरूर बन सकती है। तो जितना जितना बाबा के साथ प्यार करते हैं उतना उतना बाप समान सहज बनते जाते हैं, और वर्तमान समय बाबा यही हम बच्चों से चाहते हैं कि तुम बाप समान बन जाओ, और बाप समान बन करके जल्दी से जल्दी इस सृष्टि की भी समाप्ति होवे और तुम वापस अपने घर चलो, क्योंकि बाप दादा तुम बच्चों का इंतजार कर रहा। तो अभी इंतजाम करने की जरूरत है, इंतजार नहीं करने देना है ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए सदैव बाबा की याद में रहते हुए, एक दो को बाबा की याद दिलाते हुए आगे बढ़ते जाना, यही सदैव ईश्वरीय लव में लीन होने वालों का लक्षण है। ओम शांति।
Yeah। जगत का।